अब हम 98वीं कारिका देखते हैं। ग्रहण ग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा व्यंग्य व्यंजक भावेन तथेव स्फोटनादयोः। प्रश्न ये किया जाता है कि प्रदीप आदि जो है वह घट आदि का भी जो है ना अभिव्यंजक होता है और पट आदि का भी अभिव्यंजक होता है। ऐसा नहीं होता कि यह प्रदीप जो है इस घट का ही अभिव्यंजक होगा, प्रकाशक होगा, और यह प्रदीप जो है पट का ही अभिव्यंजक होगा। ऐसा नहीं है। घट का भी अभिव्यंजक होता है और पट का भी अभिव्यंजक होता है, मठ का भी अभिव्यंजक होता है, कट का भी अभिव्यंजक होता है। माने उसके सामने जो भी आएगा सबको वह प्रकाशित करेगा प्रदीप, किंतु ध्वनि में ये चीज नहीं है। अगर हमने ककार का उच्चारण किया हैं तो ककारत ध्वनि जो है वह ककार स्फोट का ही अभिव्यंजक होगी। अगर हमने चकार ध्वनि का उच्चारण किया तो चकार ध्वनि जो है वह चकार स्फोट का ही अभिव्यंजक होगी, वो पकार का अभिव्यंजक नहीं होगी। ये दोनों में अंतर है। ये कैसे अंतर होगा इस बात को जो है 98वीं कारिका में समझाया गया है। कहते हैं कि ग्रहण ग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। यहाँ जो ग्रहण शब्द है और ग्राह्य शब्द है, इसमें ग्रहण का अर्थ कर लीजिए गृह्यते अनेन इति ग्रहणम, माने जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए, जिसके द्वारा ज्ञान हो उसको हम ग्रहण कहते हैं। तो किसके द्वारा ज्ञान होता है तो चक्षु आदि जो इंद्रिय है उसके द्वारा ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रहण का अर्थ कर लीजिए चक्षु आदि इंद्रिय। और ग्राह्य का मतलब हो गया गृह्यन्ते इति ग्राह्याः। गृह्यन्ते माने ज्ञायन्ते इति ग्राह्याः, माने जिसका ग्रहण हो उसे हम ग्राह्य कहते हैं। तो ग्रह किसका ग्रहण होता है, किसका ज्ञान होता है इंद्रिय के द्वारा, तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो पांच हैं ये इंद्रिय के जो विषय हैं पांचों, यही हैं यहाँ पर ग्राह्य। तो ग्रहण का अर्थ हो गया ज्ञानेन्द्रिय और ग्राह्य का अर्थ हो गया ज्ञानेन्द्रिय के पांचों विषय। जैसे ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं उसी तरह से ज्ञानेन्द्रिय के विषय भी पांच हैं। और उसमें योग्यता नियता यथा, और उसमें जो है ना ग्रहण करने की जो योग्यता है, क्षमता है, वो नियत होती है, निश्चित होती है। जैसे चक्षुर इंद्रिय से हम रूप का ही ग्रहण कर सकते हैं, गंध का ग्रहण नहीं कर सकते। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय से हम गंध का ही ग्रहण कर सकते हैं, शब्द का ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे ही श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा हम शब्द का ही ग्रहण कर सकते हैं, रस का ग्रहण नहीं कर सकते। इस तरह से फिक्स है, माने किस ज्ञानेन्द्रिय से किस विषय का ग्रहण किया जाएगा, ग्रहण होगा, ये जैसे फिक्स है, माने स्वाभाविक है, स्वतः है, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ग्रहण ग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। जैसे ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के विषय में परस्पर ग्राह्य ग्राहक भाव होता है और उसकी ग्रहण करने की जो योग्यता है वह जैसे नियत होती है, निश्चित होती है, स्वाभाविक होती है, उसी तरह से व्यंग्य व्यंजक भावेन तथैव स्फोटनादयो हो, उसी तरह से इंद्रिय और विषय की तरह स्फोट और नाद में, स्फोट हो गया शब्द, नाद हो गया ध्वनि, तो शब्द और ध्वनि में भी इसी तरह से व्यंग्य व्यंजक भाव फिक्स होता है। माने ककारत ध्वनि से ककार स्फोट का ही व्यंजन होगा, पकारत ध्वनि से पकार स्फोट का ही व्यंजन होगा, अकारत ध्वनि से अकार स्फोट का ही व्यंजन होगा। इस तरह से ये नियत है। इसमें आप वो जो प्रदीप वाली जो बात कह रहे थे कि प्रदीप जो है घट का भी प्रकाशक होता है, पट का भी प्रकाशक होता है, इसी तरह से ध्वनि भी जो है ककार ध्वनि जो है वो ककार का भी प्रकाशक बने और पकार का भी बने, चकार का भी बने, तो ये बात यहाँ फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर जो है ना उदाहरण जो उचित है वह है इंद्रिय मन ज्ञानेन्द्रिय और उसका विषय। तो जैसे ज्ञानेन्द्रिय और विषय में परस्पर व्यंग्य व्यंजक भाव होता है, परस्पर ग्राह्य ग्राहक भाव होता है, उसी तरह से स्फोट और नाद में भी परस्पर व्यंग्य व्यंजक भाव फिक्स होता है, नियत होता है, निश्चित होता है। इसीलिए तालु से जिस ध्वनि का उच्चारण होगा वह ध्वनि तालु के द्वारा जो तालु से जो उच्चारित ध्वनि होगी वह ध्वनि इचु यशानाम तालु इकार स्फोट चवर्ग स्फोट और शकार स्फोट यकार स्फोट उसका ही जो है ना अभिव्यंजक बनेगी, वो अकुह विसर्जनीया नाम कंथ वो अकुह विसर्ग का व्यंजक नहीं बनेगी। आगे 99वीं कारिका में देखें कि सदृशग्रहणानां च गंधादीनां प्रकाशकं निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यम् अवस्थितम्। भिन्न भिन्न इंद्रिय के द्वारा भिन्न भिन्न जो है विषय का ग्रहण नहीं होता है, इसी बात को और ये सब जो है ना नियत होता है कि किससे किसका ग्रहण होगा, किससे किसका अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव बनेगा, इसी बात को इस कारिका में बताई गई है कि सदृश ग्रहणानाम का अर्थ करेंगे तुल्य इंद्रिय ग्राह्यानाम, कि समान इंद्रिय के द्वारा जो ग्राही है माने जिसका ग्रहण होता है वह हो गया सदृश ग्रहणानाम। तो तुल्य इंद्रिय से ग्राह्य जो है क्या है ग्राह्य, तो गंधादि नाम जो गंध आदि है उसका प्रकाशकम नियतम लोके, उसका जो है ना कौन प्रकाशक होगा उसका लोक में जो है ना बिल्कुल निश्चित रूप से अति वह सिद्धांत है। लोक में ये मालूम है कि किस इंद्रिय से किस विषय का जो है ग्रहण किया जाएगा। सदृशक ग्रहणानाम च गंधादीनाम प्रकाशकम निमित्तम नियतम लोके, माने लोक में किस कौन किसका निमित्त होगा, कौन किसका ग्राहक होगा और कौन किसका ग्राही होगा, ये निमित्तम नियतम, यह जो निमित्त है यह जो कार्य कारण भाव है ये नियत है लोक में, निश्चित है कि किस इंद्रिय के द्वारा किस विषय का जो है प्रकाश प्रकाशक भाव होगा। प्रतिद्रव्यम अवस्थितम, प्रत्येक द्रव्य में अलग अलग टाइप का जो है ना ये प्रकाश प्रकाशक भाव होता है, ये व्यंग्य व्यंजक भाव होता है और ये चीज लोक में जो है ना बहुत प्रसिद्ध है। और उसी तरह से यहाँ पर स्फोट और नाद के बीच में भी परस्पर व्यंग्य व्यंजक भाव होगा, इसमें भी फिक्स है कि अमुक ध्वनि के द्वारा अमुक ही स्फोट का व्यंजन होगा, इतर अन्य स्फोट का व्यंजन नहीं होगा। इसमें जो इन्होंने उदाहरण दिया प्रतिद्रव्यम अवस्थितम, माने प्रत्येक द्रव्य में ये फिक्स है कि किस कौन प्रकाश होगा, कौन प्रकाशक होगा, कौन व्यंग्य होगा, कौन व्यंजक होगा। इसके लिए हम दो उदाहरण आपको बताते हैं। कुमकुम आपने सुना होगा, तो कुमकुम में जो गंध होता है उसमें अगर प्योर गाय का घी दो चार बूंद उसमें डाल दें कुमकुम में, तो क्या होता है कि कुमकुम की जो सुगंध है वह उसमें उद्भूत हो जाती है, वह अभिव्यंजित हो जाती है, वह प्रकाशित हो जाती है और कुमकुम का सुगंध हमें लगने लगता है। तो घी जो है वहाँ पर अभिव्यंजक होता है और कुमकुम का जो गंध है वह अभिव्यंग्य होता है, या प्रकाश प्रकाशक भी कह लीजिए। कुमकुम गंध जो है वह प्रकाश से होता है और गो घृत जो है वहाँ पर प्रकाशक होता है। इसी तरह से सत्तू है, तो सत्तू का जो रस है उसमें अगर हम सत्तू में अगर हम जल डालते हैं तो क्या होगा कि सत्तू का जो सत्तू में जो रहने वाला गंध है वह गंध उसमें से निकलता है, और जल नहीं डालेंगे तो सत्तू में से जो है सत्तू का गंध नहीं निकलता है। तो जल डालने से सत्तू का गंध जो है वह प्रकाशित होता है, गाय का घी डालने से कुमकुम का गंध जो है वह प्रकाशित होता है। इस तरह से प्रतिद्रव्यम अवस्थितम, लोक में प्रत्येक द्रव्य में ये अवस्थित है कि किस से कौन जो है प्रकाशित होगा, कौन अभिव्यंजित होगा। जैसे गो घृत से कुमकुम गंध जो है प्रकाशित होता है, जैसे जल से सत्तू का गंध जो है वह प्रकाशित होता है। तो इस तरह से प्रत्येक द्रव्य में लोक में यह बात जो है अवस्थित है कि किससे कौन प्रकाशित होगा और कौन किसका प्रकाशक होगा। ऐसे ही स्फोट और नाद के बीच में भी यही तारतम्य समझना चाहिए, यही स्थिति जो है समझनी चाहिए। अब हम अति शतक पूर्ति कर रहे हैं, 100वीं कारिका है। प्रकाशकानां भेदांश्च प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते तैलोदकादि भेदे तत् प्रत्यक्षम प्रतिबिंबके। कहा कि लोक में, आपने लोक की अभी बात की, तो लोक में क्या होता है कि प्रदीप आदि का जब वृद्धि और ह्रास होता है, तो उस वृद्धि ह्रास होने से घट आदि का जो है ना वृद्धि ह्रास नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि दीप का लौ जब अधिक हो तो उस समय में घरा बरा दिखे, और दीप का लौ धीरे धीरे जितना जैसे जैसे कम होता जाए उसी तरह से घरा का आकार भी कम होता जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो प्रदीप आदि के वृद्धि ह्रास से घट पट आदि का जो है वृद्धि ह्रास नहीं होता है, किंतु ध्वनि में और शब्द में ये बात नहीं है। ध्वनि के वृद्धि ह्रास होने से स्फोट में भी जो है ना वृद्धि और ह्रास प्रतीत होता है। तो ये जो आपने हमेशा से उदाहरण दिया है प्रकाश के साथ ध्वनि का, जैसे प्रकाश जो है अभिव्यंजक होता है उसी तरह से ध्वनि भी अभिव्यंजक होती है, ये उदाहरण जो है फिट नहीं बैठता है, उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रदीप आदि के वृद्धि ह्रास से घट आदि जो है उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता, किंतु ध्वनि के वृद्धि ह्रास से शब्द में वृद्धि ह्रास देखा जाता है। तो इसी को स्वामी कारिका के द्वारा बता रहे हैं कि प्रकाश का नाम भेदांश प्रकाश्यः अर्थः अनुवर्तते। ताकि ऐसा है प्रकाशक के भेद के अनुसार प्रकाश्य का भी जो है ना भेद हो जाता है। प्रकाश्य अर्थ अनुवर्तते, प्रकाश्य जो अर्थ है मान जिस अर्थ का प्रकाशन होना है वह अर्थ प्रकाशक के भेद का अनुवर्तन करता है, प्रकाशक के भेद को अपने में जो है ना शामिल कर लेता है। प्रकाश का नाम भेदांश प्रकाश्य अर्थ अनुवर्तते, जो प्रकाश्य अर्थ है वह प्रकाशक के भेद को अपने में ढाल लेता, अपने में ले आता है। उदाहरण दिया आगे, तैलोदकादि भेदे तत् प्रत्यक्षम प्रतिबिंबके। बिंब और प्रतिबिंब, बिंब आप जानते हैं, जैसे आप जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो आप हो गए बिंब, और आईना में जो चेहरा दिखता है वह आईने वाला चेहरा जो है वो हो गया प्रतिबिंब। तो यहाँ पर तैल उदक आदि भेदे कहा है, तो तैल समझते ही है तेल, उदक माने जल, और आदि से ले लीजिए दर्पण को, तो तेल में आप चेहरा देख सकते हैं, उदक में निर्मल जल हो स्वच्छ जल हो उसमें भी आप चेहरा देख सकते हैं, और दर्पण में भी जो है ना आप चेहरा देख सकते हैं। तो तीनों में चेहरा दिखता है, लेकिन तेल में जो जब चेहरा देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना काला काला चेहरा दिखेगा, जब पानी में आप चेहरा देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ना मध्यम चेहरा जो है पानी में आपको दिखा, जितना स्वच्छ पानी होगा उतना स्वच्छ आपको चेहरा दिखेगा। ऐसे ही दर्पण में जब आप चेहरा दिखेंगे तो जिस तरह का आपका चेहरा वैसा चेहरा दिखेगा। तो ये तैल, उदक, दर्पण ये सब प्रकाशक हो गए, और प्रकाश से क्या हुआ आपका चेहरा। तो प्रकाशक के भेद के अनुसार प्रकाश जो चेहरा है उसमें भी भेद तो दिखाई देता ही है। इसी तरह से कहा कि तेल उदकादि भेदे तत् प्रत्यक्षम प्रतिबिंब के, कि प्रतिबिंब में यह प्रत्यक्ष होता है, यह प्रत्यक्ष होता है माने यह ज्ञान होता है कि तेल उदकादि भेद होने पर, प्रकाशक के भेद होने पर प्रतिबिंब में भी वह भेद दिखाई देता है। इसी तरह से ये जो ध्वनि है वह प्रकाशक है तैलोदकादि की तरह है, और शब्द जो है वह प्रतिबिंब की तरह है। तो जैसे तैलोदकादि का भेद चेहरे में दिखता है, प्रकाश में दिखता है, उसी तरह से ध्वनि का जो भेद है वृद्धि ह्रास आदि वह भी शब्द में दिखाई देगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब 101वीं कारिका को देखें, विरुद्ध परिमाणेषु वज्रादर्श जलादिषु पर्वतादि स्वरूपाणां भावानां नास्ति संभवः। कहा कि विरुद्ध परिमाण, परिमाण कहते हैं उसको माने आकार प्रकार को, लंबाई चौड़ाई को मोटाई को आकार को कह लीजिए। तो विरुद्ध परिमाण वाला माने विरुद्ध आकार वाला जो है कौन, तो वज्र आदर्श जलादिषु, वज्र का अर्थ यहाँ पर मणि कर लीजिए, आदर्श, आदर्श का अर्थ होता है दर्पण आयना, और जल इन तीनों में ये तीनों क्या है, विरुद्ध परिमाण है। माने मणि का आकार प्रकार अलग होता है, आदर्श जो है दर्पण आयना उसका आकार प्रकार अलग होता है, जल जो है उसका आकार प्रकार अलग होता है। तो ये जो विरुद्ध परिमाण वाले हैं वज्र आदर्श जल आदि, उसमें क्या होता है कि परिमाण के कारण फर्क पड़ता है। अब जैसे पहाड़ को जो है ना, आप पूरे पहाड़ को आईने में नहीं देख सकते, पूरे पहाड़ को जो है ना जल में आप, बहुत जल हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे झील हो तो उस झील में जो है ना जितनी भी पहाड़ी रहती है उसकी परछाई जल में दिखाई देती है। अब मणि है, छोटा मणि है, उस मणि में आप पर्वत को जो है ना पूरे को नहीं देख सकते, लेकिन वहीं पर एक अड़हुल का फूल रख देंगे, जपा कुसुम रख देंगे, उस फूल को आप स्फटिक मणि में देख सकते हैं। तो विरुद्ध परिमाण वाला जो ये वज्र आदर्श जल आदि है, उसमें पर्वत आदि स्वरूपाणाम भावानाम नास्ति संभव, उसमें समान रूप वाले जो पर्वत आदि हैं, माने विरुद्ध परिमाण वाला जो बिंब है उसका विरुद्ध परिमाण वाले में जो है वज्र आदर्श जल आदि में नास्ति संभव, माने ज्ञानम संभवम नास्ति, उसमें ज्ञान संभव नहीं है। अर्थात जो प्रकाशक है उस प्रकाशक को प्रकाश के अनुरूप ही होना चाहिए, जिस प्रकाश का आकार जैसा है वैसा ही आकार अगर प्रकाशक का भी हो तो उसमें पूरा का पूरा जो है ना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अन्यथा अगर विरुद्ध परिमाण हो तो उसमें प्रकाश प्रकाशक भाव जो है वह पूरी तरह से बन नहीं पाता है। इस प्रकार हमने 101वीं कारिका को भी पढ़ा। अब 102 कारिका से हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं स्थगित करते हैं।